ఓం శాంతి. హమ్ సబ్కో ఆజ్ కల్ప పహలే కి తరహ ఇతనే బడే పరివార్ కో ఆపస్ మే మిల్నే కా సన్ముఖ మిల్నే కా శివ బాబా నే డ్రామా మే శుభ అవసర దియా. ఆప్ దేఖేంగే కి పహలే భాయి జీ నే గీత గాయా తో బాబా తో హమారే సాథ్ హో హీ గయా ఔర్ యహాన్ డర్నే కి తో కోయి బాత్ హై హీ నహీ. లేకిన్ ఆప్నే దేఖా హోగా యే గీత హమ్నే కయీ బార్ సునా హై, లేకిన్ జబ్ రికార్డ్ మే సునతే హై ఔర్ జబ్ సన్ముఖ సునతే హై తో కుచ్ ఫర్క్ మహసూస్ హోతా హై ఆప్కో. సన్ముఖ సున్నే మే బహుత్ డైరెక్ట్ టేస్ట్ ఆతా హై. ఇస్సే ఆప్ సోచో కి సత్యుగ్ మే కోయి భీ చీజ్ రికార్డెడ్ హోగీ యా సన్ముఖ హోగీ? సన్ముఖ హోగీ. హమారా బాబా కా జ్ఞాన్ భీ సన్ముఖ కా జ్ఞాన్ హై. బాబా కా మిలన్ భీ సన్ముఖ కా మిలన్ కా జో మజా హై వో రికార్డెడ్ కా హై? పుస్తక పఢ్ లే, కోయి చిత్ర దేఖ లే, హై యా నహీ హై? నహీ హై. ఇస్లియే పరివార్ హమారా బహుత్ బడా హై, పరంతు జబ్ హమ్ సన్ముఖ ఏక్ దూసరే కో దేఖతే హై తో పరివార్ కా భీ నషా కర్తా హై. బాబా కహతా హై మేరే బచ్చో కో హర్ సమయ నషా చడా రహనా చాహియే ఔర్ వహ నషా శక్తి సే ఆతా హై, నషే సే శక్తి ఆతీ హై. ఇస్లియే ఆప్ సోచో కి వాహ మేరా బాబా వాహ, ఠీక్ హై, వాహ మేరా బాబా వాహ. బాబా తో యా తో నిరాకార లోక మే రహతే హై యా సూక్ష్మ మే బాప్ దాదా రహతే హై, ఠీక్ హై. వాహ డ్రామా వాహ, డ్రామా తో నాటక కో కహతే హై. వో తో జబ్ పూరా నాటక కోయి యాద్ కరే తబ్ డ్రామా కా నషా చడే. ఔర్ ఆజ్ కే డ్రామా కా తో నషా నహీ హై, జబ్ హమ్ అప్నే డ్రామా కి ఆద్ దేఖతే హై తో నషా హై. తో ఐసీ కౌన్ సీ చీజ్ హై జో హమే హర్ వక్త్ నషా చడా సక్తీ హై? ఔర్ వో హై హమారా పరివార్ జో సన్ముఖ రహతా హై. సెంటర్ మే భీ హమారా పరివార్ హై, లౌకిక భీ అబ్ అలౌకిక హో గయా హమారా పరివార్ హై. ఔర్ బీచ్ బీచ్ మే జబ్ హమ్ మిల్తే హై భిన్న భిన్న ప్రకార్ సే, బాబా నే హమారే లియే కళ్యాణ కే లియే సంగఠన బనాయే హువే హై, ఉస్మే భీ నషా చడతా హై. వర్నా ఆప్ సోచియే కి అప్నే అప్నే కేంద్ర పర్ రోజ్ వహీ భాయీ బహన్, రోజ్ వహీ టీచర్, రోజ్ వహీ క్లాస్, లేకిన్ జబ్ ఆప్ కిసీ ప్రోగ్రామ్ మే అప్నే వహాన్ భీ ఇకట్ఠే హోతే హై తో నషా చడతా హై. ఔర్ మధుబన్ తో హై హీ పవర్ హౌస్, యహాన్ తో నషా చడతా హై. ఇస్లియే అబ్ ఆప్ అప్నే దాయే బాయే ఆగే పీచే దేఖియే తో క్యా దిఖేగా? వా మేరా బేహద్ కా ఈశ్వరీ పరివార్. తో ఏక్ బారీ ఆప్ ఉస్ స్థితి మే రహకర్ ఖుషీ సే బోలేంగే కి వా మేరా ఈశ్వరీ పరివార్ వాహ్. బోలియే అభీ తో రిహర్సల్ హువా హై, అసలీ తరహ సే బోలియే వా మేరా ఈశ్వరీ పరివార్ వాహ్. తో దో బార్ తో వాహ వాహ హోయి గయి. ఇస్లియే బాబా కహతా హై అగర్ వాహ వాహ కి దునియా మే జానా హై ఔర్ యహాన్ హీ వాహ వాహ కర్నా హై తో వో చీజే హమ్ సదా అప్నే సాథ రఖే జో వాహ వాహ కర్నే వాలీ హై. తో బాబా నే తో వాహ మేరా ప్యారా బాబా వాహ, వా డ్రామా వా, అర్వా ఈశ్వరీ పరివార్ వా, और तो कुछ बचा ही नहीं, जहां हाय हाय हो वाह वाह हो गया ना। अब आप देखेंगे दुनिया के अंदर जब दो व्यक्ति मिलते हुए कहीं जाते हैं किसी को छोड़ने के लिए, मान लो आपके कोई संबंधी आपको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आते हैं, एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं, तो क्या कहते हैं? गुड बाय है, गुड बाय कहते हैं। क्यों कहते हैं कि आजकल तो छोटा नाम हो गया गुड बाय, असली था गॉड बी विद यू, अब तक मैं तेरे साथ था, अब तुम जा रहे हो, अब तुम्हारे साथ कौन होगा? ईश्वर होगा। तो गॉड बी विद यू को उन्होंने छोटा करके गुड बाय कर दिया। फिर सोचा कि आजकल गुड तो कुछ है ही नहीं, तो गुड तो छोड़ो बाय कर दो सिर्फ। फिर वो क्या करने लग गए, बाय 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 बाय। अच्छा, फिर उन्होंने सोचा जिंदगी में तो हाय हाय होती है, हम बाय बाय करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, हाय हाय, ये तो सच्ची बात कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि ये ताली हाय हाय की नहीं है, ये वाह वाह की है। फिर से बजाइए, हाँ वाह वाह की ताली। अब आप सारे क्लब को और नजर दौड़ाएं तो आप क्या पाएंगे कि सारे क्लब में सबसे छोटा परिवार, छोटे से छोटा संगम युग पर हमारा परिवार होता। परमधाम में तो परिवार है ही नहीं है, वहां तो सारे बैचलर हैं, ठीक है ना, परमधाम में। अच्छा, जब नीचे आते हैं माता पिता बनते हैं तो हमारा अडॉप्टेड परिवार होता है, उसमें कितने रिश्ते हैं, कितने रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन, इससे ज्यादा छोटा परिवार तो हो ही नहीं सकता। अगर माता पिता अकेला भाई हो तो भी अच्छा नहीं लगता, माता पिता अकेली बहन हो तो भी अच्छा नहीं लगता, और दोनों माता पिता में से एक चला जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। तो परमानेंट अविनाशी हमारा परिवार संगम युग पर है, माता पिता भाई बहनों का छोटा सा क्या है, परिवार। लेकिन अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा परिवार हमको जो मिलता है वो कौन से युग में मिलता है, संगम युग पर। संगम युग पर हमारा परिवार संख्या में कितना बड़ा है आप जान तो सकते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा है कि 84 जन्मों में पूरे, जिसने 84 जन्म लिए हैं उसके भी जितने मित्र संबंध रिश्तेदार हुए हैं 84 जन्मों में, कितने हुए होंगे? अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक जन्म में 100 रिश्तेदार भी गिन लें, जो बहुत ज्यादा है ना, सतयुग में तो इतने होते ही नहीं, लेकिन रिश्तेदार में रिलेटिव, संबंधी नहीं, मित्र नहीं, रिश्तेदार, बिल्कुल क्लोज फैमिली के जो रिश्तेदार हैं, अगर 100 भी गिन लें तो 84 जन्मों में कितने हुए, कितने हुए, 8400 ज्यादा से ज्यादा। हमारे 6 छोटे परिवार में कितने रिश्तेदार हैं, भाई बहन ही सही, लाखों हैं, 9 लाख तो हैं, तो बताइए छोटे से छोटा परिवार भी हमारा, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार, और बड़े से बड़ा परिवार भी हमारा, तो बड़े का सुख भी है छोटे का भी है, दोनों हाथ में लड्डू है और क्या चाहिए। तो कम से कम दोनों हाथ में लड्डू को देखकर ही खुश हो जाइए, ठीक है, वाह मेरा दैवी परिवार वाह। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि इस परिवार को हम दैवी परिवार कहें या ईश्वरी परिवार कहें। हम तो लिख देते हैं डियर डिवाइन ब्रदर, डियर डिवाइन सिस्टर, मेरे दैवी भ्राता, मेरी दैवी बहन। लेकिन ये देवी देवता तो सतयुग में होते हैं और कंप्लीट दैवी गुण भी सतयुग में होते हैं, और उस वक्त जो होते हैं वही होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो संगम युग ही केवल ऐसा युग है जिसमें हम अपनी दिव्यता को बढ़ाते हैं। चढ़ती कला का युग संगम युग है। बाबा कहते हैं हर चीज संगम से ही पैदा होती है। अच्छी चीजें संगम पर जन्म लेती हैं और जो ना अच्छी हैं वो समाप्त होती हैं। इसलिए बाबा ने आजकल जो मुरलियां चल रही हैं आप पढ़ रहे होंगे, बाबा ने कहा है कि माता पिता रूप से बाबा संगम पर ही हमें मिलते हैं, और जो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, बालक और बालिकाएं छोटे बच्चे को तो बच्चा ही कहा जाता है, तुम्हारी कृपा से सुख गिनेरे। कब होते हैं? केवल संगम पर, जबकि बाबा प्रैक्टिकली आते हैं, प्रैक्टिकली माता को अडॉप्ट करते हैं, प्रैक्टिकली बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। हमारा सारा परिवार है ही अडॉप्शन का, इसमें लौकिक तो है ही नहीं। दुनिया के अंदर भी माता अडॉप्ट होती है तब संतान होती है, लेकिन लौकिक होती है। यहां माता भी अडॉप्टेड, संतान भी अडॉप्टेड। इसलिए हमको क्या कहा जाता है? मर जीवा। हम क्या हैं? मर जीवा परिवार है। तो जब हम मर जीवा परिवार हो गए तो हमारा लौकिक रहा, लौकिक से तो मर गए। इसलिए बाबा कहते हैं इस परिवार की जो अलौकिक सुख है, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, जिसमें सुख ही दुख सुख है, दुख है ही नहीं, उसके लिए हमें सदा अपने आप को अलौकिक रूप में रखना है। संगम युग है अलौकिक युग, सतयुग भी लौकिक युग है दुख का सुख का, कलयुग भी लौकिक दुख है दुख का, लेकिन संगम युग जो है अलौकिक युग है। यहां दुख होता ही नहीं। आप विस्मृति में आए तो दुख होगा, स्मृति में आए तो सुख हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ब्रह्मा कुमार और कुमारी एक बहुत ही पदम पदम सौभाग्य का रिश्ता है, क्योंकि ब्राह्मण इतना बड़ा परिवार, इतना छोटा परिवार, इसलिए सुख ही सुख है। अभी एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आप चाहते हो हमारा परिवार बढ़े या इतना ही रहे, क्योंकि इतना ही रहेगा तो सुख ज्यादा होगा, जो कुछ है बांट के खा लेंगे। अगर परिवार बढ़ेगा उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि ये सोच लो, अगर अलौकिक समझोगे तो कहोगे बड़े, क्योंकि हमको क्या मिलता है बाबा से? दृष्टि मिलती है और मिलन मुलाकात की खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं वो तो अव्यक्त में भी होती रहती है। अब बाबा आएंगे कल, अच्छा बाबा ने विधि चेंज कर दी अपने मिलने की, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि पहले समय से धीरे धीरे जैसा जैसा परिवार बढ़ता है विधि चेंज होती है, लेकिन विधि चेंज होने में हमारा लाभ है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं अव्यक्त क्यों हुआ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि जब शरीर था कोई ना कोई लिमिट तो थी, शरीर को रेस्ट कराना है, शरीर को भोजन कराना है, शरीर को स्नान कराना है, कहीं दूसरी जगह जाना है तो शरीर को वाहन चाहिए आदि आदि। लेकिन जब अव्यक्त हो गए तो इन सब प्रॉब्लम से छूट गए। संगम जो हमारा सूक्ष्म लोक है वहां आपको स्नान करना पड़ता है नहीं, वहां आपको भोजन करना पड़ता है नहीं, फुल टाइम आपका फरिश्ता रूप है। इसलिए बाबा कहते हैं आप यहां आते हो बाबा से मिलने, तो सोचते हैं आगे की सीट पर बैठें, पीछे की पर ना बैठें, बाबा के पास जाके बैठ जाएं, फिर बैठें भी तो कहेंगे आपका टर्न पूरा हो गया, आप जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं मैंने तो ऐसा प्रबंध किया है जिसको एटीएम कहते हैं, एनी टाइम मुलाकात, और जितनी चाहिए कर सकते। कैसे? वहां तो सूक्ष्म लोक में कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। सूक्ष्म लोक में आपको कोई ये नहीं कहेगा अब आपका टाइम पूरा हो गया, आप जाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरा दिल तख्त इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सारी विश्व की आत्माएं भी अगर आना चाहें तो उस पर आ सकती हैं। पर ये ड्रामा है कि बाबा के बच्चे ही आ सकते हैं। क्योंकि आपने खेल देखा होगा, सर्कस के अंदर एक बड़ा सारा गोला होता है, वो घूमता रहता है, तो बच्चे उस पर बैठ जाते हैं, तो पहले वो स्लो घूमता है, फिर तेज होता जाता है, तो कोई इधर गिरता है, कोई इधर गिरता है, बहुत कम जो बीच में जाकर के बैठ जाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्टर्ब नहीं होते, स्थिरियम रहते, वो बचते हैं, उनके लिए ताली बजती है। इसलिए बाबा कहता है कि सारे आप अपने लिए खूब ताली बजाइए क्योंकि आप स्थिरियम हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं स्थिरियम होने का ही सारा मैं तुम्हें युक्ति बताता हूं, जादू का तरीका, जिससे आपको कोई इधर जितना मर्जी तेज घूम ले आप वहीं रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि तुम ही, आप बच्चे ही मेरे दिल तख्त के एंटाइटल्ड हो। लेकिन क्या हम दिल तख्त पर फुल टाइम बैठते हैं, या कहते हैं तख्त पर तो राजा भी थोड़ी देर बैठता है, तो मैं बाबा के दिल तख्त पर सारा टाइम क्यों ना बैठूं, थोड़ा नीचे भी आ जाऊं। तो बाबा कहते फिर देख लो, नीचे आए तो क्या होगा, फरिश्ता कभी नीचे नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं दिल तख्त पर बैठे रहो, जो रॉयल लोग होते मिट्टी पर नहीं पैर रखते। आज भी आप देखेंगे रस्म है, कोई बहुत बड़ा नेता वगैरह आता है तो उसके पैर मिट्टी पर नहीं रखाते, कारपेट बिछाते हैं, जिसको रेड कारपेट कहते हैं, कि आपका स्वागत कर रहे हैं, धरती पर पांव रखो, मिट्टी पर नहीं रखो। तो बाबा कहता मिट्टी कौन सी है, ये शरीर हमारा मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में जाएगा, तो बॉडी कॉन्शियस में नहीं आएंगे तो हम दिल तख्त पर रहेंगे। अब आप देखिए कि ईश्वरी परिवार की शक्ति कितनी है। एक बाबा का ब्राह्मण परिवार के माता पिता बच्चे क्लास में आते हैं, घर में जाकर अगर माता पिता आपस में क्रोध से बात करें तो बच्चे क्या बोलते हैं, हैं? मम्मी डैडी, अच्छे बच्चे क्रोध नहीं करते, वो सिखा रहे हैं अपने माता पिता को, क्योंकि क्लास में सुन के आए हैं। ये भी एक शक्ति है। अगर कोई ब्राह्मण बैज लगा के कोर्ट में खड़ा हो कहीं, तो क्या पूछते हैं, आप कोर्ट में? अब बताइए कौन सी शक्ति है, कोर्ट में तो सारी दुनिया जाती है, आजकल बड़े बड़े बाबा साधु सन्यासी भी कोर्ट में जाते हैं, लेकिन आप तो क्यों कहते हैं, अरे आप कोर्ट में? अच्छा, अगर कोई बैज लगा के कोई ऐसी चीज खरीद रहा हो जो ब्राह्मण परिवार के युक्ति युक्त नहीं है, मान लो वो बैज लगा के आइसक्रीम खा रहा है किसी दुकान पे, तो क्या होगा, पहले तो उसको शर्म आएगी, बैज को अंदर ढक के खाएगा, कभी कोई ये ना समझे ब्रह्म कितनी शक्ति है। अगर बैज लगाया हुआ तो दुकानदार ही पूछेगा आप भी आइसक्रीम खाते हैं बाजार की, देखो कितनी शक्ति है। इसलिए वाह मेरा ईश्वरी परिवार, वाह, ये गुप्त शक्ति है और किसी को नहीं कहेगा। आप देखेंगे कि साधु महात्मा सिगरेट पी रहे होते हैं, चिलम पी, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कहेगा। आप सिनेमा देखने चले जाए बाबा के बच्चे, तो जो टिकट बेचने वाला है वो भी हैरान होगा, आप सिनेमा में आए हैं, कितनी शक्ति है ईश्वरी परिवार की। इसलिए बाबा कहता है कि जैसे कमल पानी के अंदर उसका असर नहीं हो सकता, ऐसे बाबा के बच्चों पर इस दुनिया का असर हो नहीं सकता। हमारा असर उन पर हो सकता है, ना हो कोई बात नहीं, उनका भाग्य, लेकिन उनका असर हमारे पर नहीं हो सकता। ये कैसे बन गया, ऐसा वंडरफुल वंडर कैसे हो गया? तो बाबा कहता है कि जैसे छाछ के अंदर मक्खन मिक्स होता है, छाछ के अंदर मक्खन मिक्स होता दिखाई नहीं देता, लेकिन अब जब आप छाछ का मंथन करते हैं, मंथन करते हैं, मंथन करते हैं, तो मक्खन उसके ऊपर निकल करके तैरने लग जाता है। देखने में मक्खन मोटी चीज है, लेकिन पानी पर तैरता है छाछ, अर्थात वो हल्की चीज है। अच्छा, एक बार मक्खन निकल आया और तैरने लग गया, अब आप कोशिश करें कि उसका छोटा सा टुकड़ा फिर छाछ में मिक्स हो जाए, होगा? कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई बाबा का बच्चा ब्राह्मण बन गया और एक बार उसको अच्छी तरह पक्का निश्चय हो गया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आपको सपने में भी कोई कहे नहीं नहीं तुम शरीर हो, आत्मा नहीं हो, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है आपकी क्वालिटी ही अलग हो गई, आप कमल की तरह बन गए, हंस की तरह बन गए। कोई कोशिश भी करे, आप खुद भी कोशिश करें कि हम अपनी मर्यादा को तोड़े, टूट ही नहीं सकती। अगर किसी से गलती से टूट जाए तो दूसरी बार और शक्तिशाली हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए संगम युग को क्या कहा जाता है, ये हमारे बहुत बड़े भाग्य की एक चिन्ह है। संगम युग को क्या कहा जाता है, चढ़ती कला का युग। चढ़ती कला तेरे भाने, सिर्फ हमारा नहीं, सबका भला। देखो, ब्राह्मणों की थोड़ी सी चढ़ती कला से सारा विश्व परिवर्तन हो जाता है, सारे फल फूल पेड़ पौधे परिवर्तन हो जाते हैं, सारे पशु पंछी परिवर्तन हो जाते हैं, प्रकृति के सारे तत्व परिवर्तन हो जाते हैं, तेरे भाने सबका भला। अब बाबा स्वर्ग किसके लिए बना रहा है, बाबा स्वर्ग किसके लिए बना रहा है, वहां कौन रहेगा? क्या आज की 800 करोड़ आत्माएं वहां रहेंगी स्वर्ग में? नहीं। बाबा को बच्चों से इतना प्यार है कि बाबा कहते मेरे बच्चे तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए स्वर्ग बना रहा हूं और तुम्हारे से बनवा रहा हूं। जो तत्व शुद्ध होंगे, जो पशु पंछी सुंदर हो जाएंगे, जो मच्छर बिच्छू आदि वहां रहेंगे नहीं, जो कांटों के पेड़ नहीं रहेंगे, सब जगह बाहर ही बाहर होगी, वो बाबा कहते बाबा योग लगा के बनाता है या हमारे योग से बनता है, क्या ख्याल है? तो बाबा कहता मैं तो सिर्फ गाइड करता हूँ, सतयुग में तुमने जाना है या मेरे जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं आप अपने योग का महत्व देखिए कितना है। हमको भी अपने योग का इतना महत्व नहीं है जितना बाबा हमको बार बार कहते हैं। योग मैंने सिर्फ बाबा, सिर्फ बाबा, क्योंकि बाबा के पास सारी शक्तियां हैं, बाबा हमारा सब कुछ पूरा कर सकता है, सारे संबंध हम बाबा से ले सकते हैं, और जितने होंगे वो छोटे टाइम के होंगे, मॉर्टल होंगे, क्योंकि शरीर और शरीर से जुड़ने वाली सब चीजें अल्पकालिक हैं, लेकिन बाबा से हमारा संबंध है आत्मा और परमात्मा का। तब बाबा कहते हैं कि कितने भाग्यशाली हैं हम, ये संगम पर रह रहे हैं और संगठित रूप से। संगठन की बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारी बहनें एग्जाम्पल दिया करती हैं कि पांच उंगलियां आपस में लड़ाई कर रही हैं, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। उनको कहा कि अच्छा तुम लड्डू बना के दिखाओ, एक एक उंगली नहीं बना सकती, छोटी बड़ी मिक्स होके लड्डू बना सकती हैं। अगर पांच उंगलियां लड्डू बना सकती हैं, शास्त्रों में लिखा है कि पांच पांडव पांच विकारों और पांच तत्वों पर विजय पा सकते हैं, पांच तो कहने में आता है मुट्ठी भर, तो आप सोचिए कि 10 लाख ब्राह्मण परिवार क्या नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है आपका एक संकल्प, ब्राह्मण का शुद्ध संकल्प एक भी कमाल कर सकता और कमाल कर रहा है। आप देखिए कहां कहां से बाबा का परिवार जो है सिर्फ भारत में नहीं है, बाबा का परिवार, क्योंकि बाबा सारे विश्व को स्वर्ग बनाता है। अगर बाबा भारत को स्वर्ग बना दे और इधर पाकिस्तान हो, इधर चाइना हो, नीचे लंका हो, तो भारत तो स्वर्ग रह चुका। इसलिए बाबा कहते हैं मैं अटल अखंड निर्विघ्न सुख शांति में स्वर्ग बनाता हूं। फिर बाकी आत्माएं, तो बाबा कहते हैं बाकी आत्माएं आपको डिस्टर्ब ना करें सुख भोगने में, उनको मैं ऊपर टांग देता हूं। क्या कि खबरदार, मेरे बच्चे राज्य कर रहे हैं, कोई भी तुम्हारे में से नीचे नहीं जा सकता, पूरा बैन है। जब तक द्वापर नहीं आता एक भी आत्मा उनमें से नीचे नहीं आती। तो बताइए किस किस कारण से हुआ। बाबा कहता है मैंने एक ब्राह्मण नहीं बनाया, एक ब्राह्मण ने स्वर्ग नहीं बनाया। बाबा की हजारों लाखों भुजाएं दिखाते हैं और गोवर्धन पर्वत को उठाता बाबा है, लेकिन हमारे से केवल उंगली लगाता है। उंगली लगाकर आपको इतना भाग्य मिल जाए, इससे बड़ा भाग्यशाली कोई हो सकता? ठीक है, अपने भाग्य के लिए क्या करें, ताली बजाएं या वाह 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 कहें। अच्छा। अब आप देखिए कि जब हम संगठित रूप में होते हैं तो ऊपर से अगर जैसे एक्सरे किया जाता है, डॉक्टर एक्सरे करता है, तो उसमें स्किन नहीं आता, हड्डियां आती हैं अंदर की। इसी प्रकार से अगर रात के समय बिल्कुल अंधकार में या अज्ञान रात्रि को देखकर ऊपर से कोई विश्व का एक्सरे ले, तो कहां कहां बत्तियां चमक रही होंगी। जहां जहां बाबा के केंद्र होंगे या बाबा के बच्चों के घर होंगे, बाकी अंधकार ही अंधकार है। तो बाबा कहते हैं मधुबन है पावर हाउस, मधुबन है पावर हाउस। पावर हाउस खुद के लिए बत्तियां नहीं जगाता, बिजली नहीं पैदा करता, दूसरों के लिए करता है। तो अगर मधुबन को पावर हाउस देखकर आप देखें कि वहां से लाइट कहां कहां गई हुई है, स्पिरिचुअल लाइट, तो आपको सारा विश्व जगमगाता हुआ नजर आएगा। दुनिया का ऐसा कोई महाद्वीप नहीं है, दुनिया के ऐसे कोई देश नहीं है जहां बाबा के बच्चे ब्राह्मण ना हो। तो आप सोचिए गुप्त वेश में बाबा ने इतना बड़ा हमारा परिवार बनाया है कि जिसमें जब हम ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, आजकल विदेशियों का सीजन है, कल भी 700-800 विदेशी आएंगे, इतनी खुशी होती है कि देखो हमारे रिश्तेदार जो हैं देश में है विदेश में है, कोई रंग भेद नहीं है, कोई भाषा भेद नहीं है, केवल आत्मिक संबंध है। और जब इतना सारा अभी तो हमारा परिवार थोड़ा थोड़ा आता है, यहाँ पर आएंगे 20,000 आएंगे, 25,000 आएंगे। अगर सोचो कि किसी दिन सारा परिवार इकट्ठा हो जाए हमारा कहीं भी, तो दुनिया दंग नहीं रह जाएगी तो क्या होगा। अभी भी दंग रह जाते हैं। आप देखते हैं, आप ट्रेवल करते हैं, आपको अच्छी तरह से देखते हैं, छुप के देखते हैं, शर्म आती है उनको, ये कौन है, ये फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं, इनमें क्या है, कुछ हमारे में नहीं है, हैं सिंपल हैं, लेकिन इनके अंदर स्पेशल चमक है, इनके अंदर स्पेशल आकर्षण है। तो हमारा परिवार आकर्षित करने वाला है, आकर्षित होने वाला नहीं है। जो अच्छा हीरो एक्टर होता है उसको लोग क्या देखते हैं, हीरो एक्टर सबको आकर्षित करता है, लेकिन हीरो एक्टर थोड़ी प्रजा की तरफ देखता है, उसको तो नशा रहता है। क्यों कि जो कुछ एक्ट वो करता है दूसरों के लिए करता है, तो दूसरे खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, हम भी कर्म करते हैं लेकिन हम किसके लिए करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, दूसरों का बाबा से कनेक्शन जुड़वाते हैं। तो इसलिए हम देने वाले हो गए, बाबा से लेकर हम देते हैं, हमारा कुछ नहीं है। आप किचन में जाओ, बाबा का दिया हुआ राशन, बाबा का दिया हुआ आटा, बाबा का दिया हुआ चावल, बाबा की दी हुई दाल, हम सेवाधारी उसका भोजन बना के बाबा के बच्चों को खिला देते हैं, तो उसका भी हमें पुण्य मिल जाता है। यानी बाबा की दी हुई चीज को हम दूसरे को देकर हमारा भाग्य बाबा बना रहा है। जैसे दुनिया में भी आप देखेंगे कि माता पिता अपने बच्चे के हाथ में अपना कमाया हुआ पैसा देकर बच्चे से दान करवाते हैं कि बच्चे का भाग्य बनेगा, या बच्चा छोटा हो तो उसके सिर से घुमा करके दान करते हैं। तो बाबा कहता है कि आपको देखो कितने भाग्यशाली हैं, केवल बाबा के बच्चे बने तो क्या हुआ, सब कुछ बाबा हमारी भाग्य भी बना रहा है, हमारे पिछले कष्ट भी दूर कर रहा है। बाबा कहता है मैं तो बच्चे ने बाबा कहा, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ गलती से शिव की पूजा कर रहे थे तो क्या हुआ कि नीचे शिवलिंग था वो प्रकट हो गया, बाबा ने ऐसे ही बाबा भी कह दिया तो भी बाबा उसको गिनती में कर लेता है। अगर आप किसी दिन शाम को ये कहें आज मेरा योग नहीं लगा तो बाबा उसको भी योग में गिन लेता आपके में। सोचो कभी इसने मुंह से योग तो बोला, ये तो रियलाइज किया कि मेरा योग नहीं लगा, तो बाबा हमारी नंबर इस प्रकार से जोड़ रहा है। इसलिए अब संगठन की शक्ति, हम सब जानते हैं कि जितनी संगठित शक्ति होती है, हमेशा हम एग्जीबिशन में भी दिखाते हैं कि एक छोटा सा शीशा, उससे जब सूर्य की किरणें इकट्ठी करते हैं, स्कूल में भी सिखाते थे, तो कागज को आग लग जाती है। तो बाबा कहता है अगर मेरे सारे बच्चों की इकट्ठी संघर्ष शक्ति आज भी कह दे हो जा, अर्थात क्या हो जा, पुरानी दुनिया पुरानी खराब चीजें भस्म हो जा, तो हो जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, आज के जितने हमारे ब्राह्मण हैं अगर कह दें हो जा तो हो जाएगा। अब बाबा कहता है सब कुछ तैयार है, एडवांस पार्टी भी पूछ रही है, प्रकृति भी तैयार बैठी है, ऑर्डर करो अभी हम देखो क्या करते हैं इसकी सफाई है। जैसे पानी डाल के मोटर को धुलाई करते हैं, हम बड़ी बड़ी पानी की लहरें लाएंगे सब साफ हो जाएगा। अच्छा एटम बम बनाने वाले भी कहते हैं हम तंग आ गए हैं इसको रख रख के, हैं कहां तक रखेंगे, शुरू करें। अच्छा लेकिन बाबा कहता है बच्चे अंदर से तो तैयार हैं, चाहते हैं, जब कोई कष्ट आता है, ट्रेन में भीड़ होती है, कुछ होता है, अरे भगवान के बच्चे ये कहां बैठे हैं, लेकिन फिर भी इकट्ठा और सीधा इकट्ठा संकल्प अभी नहीं उठता। इसलिए कि संगठन के बल को हम नहीं जानते, हमेशा जो शस्त्र होते हैं वो दुश्मन की तरफ चलाए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा ऐसा भी होता है गलती से शस्त्र चला देता है, अपने बच्चे पे लग जाता है, कभी खुद को भी लग जाता है, कभी चलने वाले सड़क पर को भी लग जाता है। तो हम अपने शस्त्रों को देखें कि विनाश करने वाले शस्त्र जो हैं वो कहीं हम उनका मुंह बजाय हम माया की तरफ करें, अपने परिवार की तरफ तो नहीं कर लेते, इसलिए संगठन कमजोर हो जाता है। अगर आपने बाहर तूफान आ गया, आपके 30 खिड़कियां हैं और आपने 29 भी बंद कर ली, मान लो आप सोचेंगे बहुत खिड़कियां बंद हैं, लेकिन वो एक से भी आ जाएगा और उतना ही नुकसान कर देगा, इसलिए वो एक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब बाबा कहते हैं कि अपने अंदर हमको टेस्ट करना है कि सूखी हुई हमारी तीली भी सूखी हो गीली ना हो, और बारूद भी सूखा हुआ हो, हर चीज ऐसे खुश्क हो। आप देखेंगे आग हमेशा खुश्क चीज में लगती है, रसदार में नहीं लगती है। कोई समुन्द्र को आग लगा सकता है, कोई कोशिश करे कि मैं सागर को आग लगा दूं, लगा सकता है, उसकी आग बुझ जाएगी, सागर वैसा ही रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो विकार हैं ये सब अग्नि है, हर विकार अग्नि है जो आपको सताती है, तपाती है, भटकाती है। अगर हम परमात्मा सागर है जिसको कहते हैं सात गुण हम गिनते हैं, सतोगुणी में कई बहनें सात गुण गिन के बताती हैं। अगर आप द्वीप भी देखें तो विश्व के पांच महाद्वीप हैं और उसमें सूक्ष्म लोग जोड़ लो तो छह और निराकार दुनिया जोड़ लो तो सात। तो सातों जिसको कहते हैं धरती आकाश पताल सब, वो हमारा अगर हम सागर के रूप में हो जाएं कि कोई भी दुनिया की शक्ति हमें सुखा नहीं सकती, कोई भी आग हमें जला नहीं सकती, खुद बुझ जाएगी तो आप देखिए हमारा संगठन क्या नहीं कर सकता। और उसका यादगार क्या है कि सतयुग में सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति कुछ सोचे वो हो जाए, जो बोले वो हो जाए, उसको सिद्ध पुरुष बोलते हैं। ये सिद्ध पुरुष है, जो बोलता है वो हो जाता है, जो सोचता है वो हो जाता है। हमारे ब्राह्मण भी कभी कभी कहते हैं कि देखो बाबा का कमाल है, हम सोचते थे आज हमने आम खाना है, देखो हमारे सामने आम आ गया, बाबा ने भेज दिया। कहते हैं कि नहीं कहते? ये तो एग्जाम्पल है, क्योंकि कहा जाता है प्रभु की है लीला और मनुष्य आत्माओं के है कर्म। प्रभु परमात्मा कभी कर्म नहीं करता, वो लीला करता है। अर्थात परमात्मा के कर्म कर्म अकर्म विकर्म से भी ऊपर है, वो हमें सिखाता है। तो बाबा कहता है ये तो मैं तुम्हें जादू सिखा रहा हूं, लेकिन सतयुग में क्या होगा? सतयुग में जो आप सोचोगे वो हो जाएगा और जो होना होगा वही आप सोचोगे। यहां एक कार्य को करने के लिए आपको कई सारे संकल्प करने पड़ते हैं। कहते हैं देखो भाई आद मध्य अंत सोच के कर्म करना है ना, आगा पीछा देखकर कर्म करना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब आप सोचो देवता आद मध्य अंत सोच के कर्म करते हैं, उनको तो आद मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जब नई कार होती है तो कोई भी चला सकता है, लेकिन कार बिगड़ जाए, ओल्ड हो जाए और उसका हर चीज बजने लगे सिवाय हॉर्न के, तो उसको मैकेनिक ही चला सकता है ना। कहकर बाहर ले जानी है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, टायर ना खोलना पड़ जाए। तो बाबा कहते संगम पर तो हमको आद मध्य अंत सोचना है, लेकिन आगे तो आद मध्य अंत का पता ही नहीं। लेकिन हमको बाबा तीनों लोकों और तीनों कालों का ऐसा ज्ञान दिया हुआ है जो एक सेकंड में आप सारा आपके आगे इमर्ज हो जाता है। उसकी अभ्यास करके हम ऐसी शक्तिशाली आत्माएं बन जाते हैं कि सतयुग में हमें शक्ति यूज ही नहीं करनी पड़ती। आप देखो सतयुग में हमारी जो डिग्रियां हैं उसमें गुण ही गुण है, सर्व गुण संपन्न। किसी शक्ति का नाम है? कभी किसी देवता के साथ लिखा होता है सर्वशक्ति संपन्न? नहीं, क्योंकि शक्तियां ही गुणों में बदल जाती हैं। बाबा कहते हैं आपको ज्ञान की शक्ति है, आपको योग की शक्ति है, अब क्या करो? उसको रूप में लाओ, उसको स्वरूप में लाओ, अर्थात उसको गुण में परिवर्तन करें। तो वहां तो गुण ही जाने हैं। तो आप देखोगे सतयुग में इतनी सिद्धि है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता, आपको बुद्धि लगानी नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि देवताओं में बुद्धि नहीं होती, कंप्लीट बुद्धि होती है। लेकिन बाबा कहता है देवताएं पवित्र बुद्धू हैं। क्यों? बुद्धि यूज ही नहीं करनी पड़ती। वो कैसे? कोई भी धनवान आदमी जब बटुआ खोलता है तो पैसे अंदर डालने के लिए खोलता है, बाहर निकालने के लिए नहीं। अगर वो खर्चा करना शुरू कर दे तो धनवान रहेगा? नहीं। आप अपनी बुद्धि कब यूज करते हो? आप सोचो, लोग कहते हैं बुद्धिमान बहुत अच्छे होते हैं। अगर बुद्धिमान अच्छे होते तो बाबा सारे इंटेलेक्चुअल को, साइंटिस्ट को, इसको उसको सतयुग में ले जाता? ले जाता ही नहीं। वहां तो आपको नकली साइंस की आवश्यकता ही नहीं है। नकली बादाम रोगन आपने बनाना ही नहीं, वहां नकली फूल बनाना ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि बुद्धि वो है जो यूज ना करनी पड़े, सदा रहे। और देवताओं की बुद्धि होती है, उसको बुद्धि ऑटोमेटिकली फंक्शन करके आपसे राइट काम कराती है। बुद्धिवान 10 बारी सोचता है तो बाबा कहता बच्चा नहीं सोचता, बाबा कहता बच्चा इनोसेंट है, बच्चा सेंट है। तो देवताएं सोचते नहीं है, क्यों? बहुत सोच लिया संगम पर, इसलिए बाबा कहते हैं वहां संकल्प सिद्धि है, हर चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक तरीके से होती है। त्रेता वाला राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो मर्यादा हमें कौन सिखाता है, हम कहां प्रैक्टिस करते हैं संगठन में। ये जो हमारा संगठन है ये ऐसे ही नहीं है। बाबा कहते हैं जो तुम सीखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप धारण करते हो, उसका प्रैक्टिकल कहां करोगे। बड़े बड़े सन्यासी हुए, उन्होंने जंगल में बैठकर तपस्या करी, मैं क्रोध को जीत लिया, मैं क्रोध को जीत लिया, मैंने क्रोध को बहुत तपस्या करी, अब मेरे में क्रोध है ही नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आए तो पहले सिचुएशन में इतना क्रोध आ गया कि परशुराम कहलाने लग गए, मेरे में काम है ही नहीं, मैं तो बस काम को जीत लिया, बाब काम रहा ही नहीं। पहली अपॉर्चुनिटी आई विश्वामित्र जी की तो फेल हो गए। तो बाबा कहते हैं जब तक आप ज्ञान को और योग को और गुणों को प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, और प्रैक्टिकल का सबूत क्या है कि हमारी सेवा भी योग हो, हमारी सेवा निर्विघ्न हो, हमारा आपस में रहना जितना संगठन हो ज्यादा उसमें हम उतना ही कंफर्टेबल रह सकें। बाबा कहते हैं अंत समय आएगा, चारों ओर शोर होगा, हंगामा होगा, भय होगा। अगर आप भगवद गीता को पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि कौरवों ने बड़े बड़े भयंकर भयानक शंख बजाए जिनसे ऐसी खतरनाक आवाज हुई कि सब कांपने लगे, और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाया, अलौकिक शंख बजाया जिससे खुश हो गए। अर्थात माया जब सोचती है कि अब मेरा राज छिनने वाला है तो बड़े भयानक रूप धारण करती है, जोर से आवाजें आएंगी। उस वक्त आप इतने सारे शोर में स्थिरियम कैसे रह सकेंगे। अगर आप 20-25 हजार के संगठन में अभ्यास किया हुआ होगा मैं कंफर्टेबल हूं, या ये सोचेंगे मेरे कमरे में 6 डाल दिए, बड़ी मुसीबत है, अब तो मुझे नींद भी नहीं आएगी, हैं? फिर क्या होगा। तो ये हमारा टेस्ट है। तो बाबा कहते हैं आपका संगठन आपको टेस्ट में पक्के करता है। आप देखेंगे कोई ब्राह्मण है मर्यादा पे पूरा नहीं चल रहा है, आप उससे घृणा करने लग जाते हैं, देखो ना कैसा है। बाबा के घर आया हुआ है, अभी भी अमृत वेले सो रहा है, है? आप उसको देखकर अपने में अभिमान ले आते हो, मैं अमृत वेले जा रहा हूं ये सो रहा है, तो क्या हुआ, आपको क्या करना है। तो बाबा कहते हैं मैं क्या करता हूं, बाबा अपने बच्चों के लिए क्या करता है, जो अच्छे काम करते हैं, जो श्रीमत का फॉलो करते हैं, उसको बाबा स्नेह देता है, ठीक है, हर एक को अनुभव है। जो नहीं करते हैं बाप के बच्चे, उसको बाबा तरस करता है, तरस। दो ही शब्द हैं बाबा के, या स्नेह या तरस। हमको क्या करना चाहिए, जो बाबा के श्रीमत फॉलो करके संगठन को मजबूत करते हैं। बाबा रोज कहता है आपका संगठन किले की तरह मजबूत होना चाहिए, माया घुसनी नहीं चाहिए, माया को मार्जन नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर आ सके। लेकिन आप देखते हैं आती है, किस रूप में आती है, किसी ना किसी ब्राह्मण के द्वारा आती है, कोई आलस्य का प्रकट कर रहा है, कोई अलबेलेपन का प्रकट कर रहा है। हम दिल्ली में रहते हैं, ब्राह्मण आते हैं बस भर के, कहते हमने आगरा जाना है। अच्छा, तो मैं उनसे पूछता हूँ आगरा क्या करने जाना है भाई, ताजमहल देखने जाना है। तो मैं कहता हूँ एक मूर्ख राजा ने मोह में आके अपनी पत्नी के एक मार्बल का मकबरा बना दिया है, तो कबर आपको क्या पड़ी है, आप ब्राह्मण हो अब वहां ताजमहल देखने जा रहे हो, अब हो गया। फिर हम क्या कहते हैं, हाँ हाँ जाओ, रस्ते में बाबा को याद करते जाना, क्योंकि उसको तो आप रोक नहीं सकते। इसलिए बाबा कहता है अगर हम ये सोचने लग जाएं, ये तो देखो कितने अज्ञानी हैं, इनके टीचर तो और भी अज्ञानी है, साउथ इंडिया से आए हैं, और बजाय 70 सेंटर पे योग करने के ताजमहल देखने नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर वाह वाह कहना है सचमुच, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह परिवार वाह, तो तब कह सकेंगे अगर परिवार के किसी एक भी व्यक्ति के लिए हम उल्टा नहीं सोचते, उसकी बुराई नहीं देखते, तब वाह वाह होगा। क्योंकि हम देखने लग जाएंगे अच्छा, आप किसी की भी अच्छाई करो उसमें शक्ति आ जाती है, उसकी तारीफ करो उसमें शक्ति आ जाती है। आप किसी हलवाई के पास जाओ कि 10 रुपए का लड्डू है 8 रुपए में दे दे, कभी नहीं देगा। अगर उस हलवाई को कहो सेठ जी आप हमारे फंक्शन में आना, आपसे हमने आपको सम्मान देना है, वो कहेगा 20,000 रुपया ले लो अपने फंक्शन में लगा दो, है ना। किसी की भी आप तारीफ करोगे, हमारे बहुत सारे काम फ्री क्यों करते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। सतयुग में देवता क्या है, एक दूसरे को देना भी नहीं पड़ता, सम्मानित है। और उनकी मूर्तियां भी देखो दूसरे को सुख शांति देते हैं, वो हमारी मूर्तियां हैं। तब करके परिवार मीन्स परिवार, किसी परिवार में कोई लंगड़ा पैदा हो जाए या कोई चलते चलते एक आंख खो बैठे या दो आंख खो बैठे तो क्या करते हैं, उसके ऊपर तरस करते हैं, उसका ज्यादा ध्यान करते हैं या सोचते हैं इसको कहीं नदी में फेंक के आ जाओ। इसलिए बाबा कहता है गवर्नमेंट भी गरीबों के लिए ज्यादा फैसिलिटी रखती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं समझो वो दैवी गुणों से बेचारे गरीब हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, हमारे बाबा के ही बच्चे हैं, निराकार बाबा ने हमको संभाला तो हम क्या उनको नहीं संभाल सकते। उनको फील ही ना होने दें कि तुम्हारे में ये कमी है। इसलिए बाबा कहते हैं परिवार में वाह मेरा परिवार वाह, ये नहीं हम कह रहे वाह मैं वाह, वाह मेरा ईश्वरी परिवार वाह। क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले हैं, एक दूसरे को शक्ति देने वाले हैं। जो बाबा ने हमें दिया है हम दूसरों को देंगे। इसलिए परिवार में किसी भी चीज को देखते हुए, बाबा का परिवार है, शिव की बारात में कौन थे, शिव की बारात में कौन थे, खास तौर पे शिव की बारात के लिए ऐसा कहा जाता है, लंगड़े इत्यादि इत्यादि। क्या मतलब हुआ कि वैसे भी भक्ति में हम कहते हैं जो लंगड़े को पहाड़ पार करा दे, अंधे को दिखा दे, बहरे को सुनना शुरू करवा दे, वो भगवान है। तो हम भगवान के बच्चे हैं। इसलिए वाह मेरा परिवार प्रैक्टिकल में तब होगा हम हर चीज में अच्छा ही अच्छा देखें, शुभ ही शुभ देखें, अशुभ भी शुभ हो जाएगा। आप देखते हैं किसी भी मकान को हम बनाते हैं, बिल्डिंग में बाहर एक चित्र बनाते हैं, उसके अंदर एक स्वस्तिका बनाते हैं 4 युगों की, और उसके ऊपर लिखा होता है शुभम लाभम, ये शुभ में ही लाभ है। आप शुभ शुभ करते जाओ शुभ ही हो जाएगा, लेकिन अगर लाभम को लोभम कर दें फिर तो क्या करते हैं, स्वार्थ में आ जाते हैं, मेरा ये मेरा बाकी तेरा। तो बाबा कहता है हमारा सब हमारा अर्थात बाबा का, तो मेरा तेरा करना भी परिवार में फूट डालना है। जैसे कोई जॉइंट फैमिली हो, वो कहे ये मेरे बच्चे हैं ये तेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे 3 हैं तेरे 2 हैं, अलग हो जाते हैं, 2 वाले को ज्यादा फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए अंत में हम यही कहेंगे वाह मेरा बाबा, वाह बाबा का बनाया हुआ ड्रामा, और वाह बाबा का बनाया हुआ संगम युग, और संगम युग में वाह मेरा ईश्वरी परिवार रूहानी परिवार वाह। तो एक बार फिर उस स्थिति में रहकर एक बार रिपीट करते हैं वाह मेरा ईश्वरी रूहानी परिवार वाह। बोला नहीं आपने, ओम शांति।
पाख तेरे उड़ना, पाख तेरे उड़ना। जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नीले कदम में जाए, पाख तेरे बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कुछ पल की बात है फिर घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संगम तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है मणियों का आगार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे।